reading from Sri Chaitanya Charitamrita, chapter 8, text number 248.
Aaj hum Sri Chaitanya Charitamrita, adhyay 8, shlok, paya sankhya 247 se paath kar rahe hain.
This is the chapter in Madhya Lila called the Talks Between the Lord and Ramananda Roy.
इस अध्याय का शीर्षक है महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप.
So to give some context, I'll read the previous verse 247. Ramananda Roy asks, or no, Sri Chaitanya Mahaprabhu asks, of the many capitalists who possess great riches, who is the topmost?
तो इसका थोड़ा सा विवरण देने हेतु हम बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि धनवानों में सर्वोच्च कौन है.
रामानंद रॉय replied, "He who is richest in love for Radha and Krishna is the greatest capitalist."
और रामानंद राय जी ने उत्तर दिया, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है वही सबसे बड़ा धनवान है.
So now for today's verse. Sampatir madhya jivarar kon sampati gane.
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 Radha Krishna premayan rase badha dhani.
Radha Krishna premayan rase badha dhani.
Sampati ra madhya jivara kon sampati gane.
Sampati ra madhya jivara kon sampati gane.
Radha Krishna prema yan rase badh dhane.
Radha Krishna prema yan rase badh dhane.
Say, translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu asked, of the many capitalists who possess great riches, who is the topmost?
श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, धनवानों में सर्वोच्च कौन है. रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है वही सबसे बड़ा धनवान है.
रामानंद रॉय replied, He who is richest in love for Radha and Krishna is the greatest capitalist.
रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है वही सबसे बड़ा धनवान है.
Report by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Everyone in this material world is attempting to conquer riches to satisfy the senses. Actually, no one cares for anything other than acquiring material possessions and maintaining them. The wealthy are generally accepted as the most important personalities in the material world, but when we compare a material man of wealth to one who is wealthy in devotional service to Radha and Krishna, the latter means the second party, which is those that are wealthy in love for Radha and Krishna, the latter is found to be the greatest capitalist. According to the Srimad Bhagavatam 10.39.2, Kim alabhyam bhagavati prasane shri ikitane tapati tatbara rajanahi vanchanti kinchana. What is difficult for the devotees of Lord Krishna or the shelter of the goddess of fortune? Although such devotees can obtain anything, O king, they do not desire anything. Okay.
Tatpare Srila Prabhupada ji ke dwara Srila Prabhupada ki is bhautik jagat mein pratyek vyakti अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए धन प्राप्त करने का प्रयास करता है. वास्तविकता तो यह है कि कोई भी व्यक्ति भौतिक संपत्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के अतिरिक्त और किसी बात की परवाह नहीं करता. इस भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सामान्यतया सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किंतु जब हम भौतिकतावादी धनी व्यक्ति की तुलना राधा कृष्ण की भक्ति के धनवान व्यक्ति से करते हैं तो राधा कृष्ण की भक्ति वाला ही सबसे बड़ा धनवान पाया जाता है. श्रीमद् भागवत के अनुसार किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने तथापि तत्परा राजन ही वांछन्ति किंचन। लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए कौन सी बात कठिन है? हे राजन, यद्यपि ये भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये किसी बात की इच्छा नहीं करते।
गुरु परंपरा प्रणाम प्लीज। नमः ओम विष्णु पदाय श्री वस्ताय मुरले श्रीमते वासुदेवाय स्वामी इति नमः। नमस्ते सर्वदेवे देवे कोलमाय प्रचारे देवि सेवा शून्यवाय पश्चात्यादि सुतारे। ओम अग्निनाथ वृंदस्य यज्ञा कदा सुरक्षया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविश्राम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं धरति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीचिदाभरकमलं श्रीगुरुं वैश्वानरं
श्रीरूपं साधुजातं जयजगन्नाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावृतं भजतरस्थितं
कृष्णचैतन्यदेवम्। जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च वामनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
Well, the Christians have a saying that the meek shall inherit the earth. Meek means the humble.
तो कृष्ण समाज में एक कहावत है कि जो विनम्र है वो धरती को भगवान के राज्य को प्राप्त करेंगे।
Puffed up person, a materialistic person, they cannot enter into the kingdom of God.
जो बहुत ज्यादा गर्वित हैं वो भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते।
I think it is a Christian saying also that it's easier for a camel to enter into the eye of a needle than for a materialistic man to return the kingdom of God. These are all Vaishnav concepts, they have come from Vaishnavism.
एक और कहावत है क्रिश्चियन समाज में कि एक ऊंट जो है सुई की छेद से निकल सकता है, लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये सब वैष्णव धारणाओं से उन्होंने लिया है। आप इन सबको
You know, here in India, we don't have to worry, this area anyways, we don't have to worry much about, you know, educating Christians about what is our role, our relation with Christian doctrine. We don't have to worry much here. But you should know, to be well educated in philosophy, you need to know the cross comparison that here are Vaishnav concepts embedded in Christianity. So sometimes you may challenge, oh, you Hindus, you're completely different, you've got something else going, we don't believe in your polytheism and all that.
तो ये सब बातें हमें जानने में बहुत प्रचार में सहायता मिलती है। यद्यपि भारत में हमको इतना क्रिश्चियन से संपर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम इन सब बातों को जानते हैं तो हम उनसे चर्चा कर सकते हैं।
There are many Vaishnav concepts that are presented in Christianity in the form of metaphor.
बहुत सारे वैष्णव सिद्धांत क्रिश्चियनिटी में उपमाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
For example, how many of you know how the law of karma.
जैसे कि आप में से कितने भक्त कर्म के नियम के बारे में जानते हैं?
Is presented in the Bible.
कि ये बाइबल में भी बताया गया है. हाथ खड़ा कर सकते हैं.
Not so many.
बहुत सारे नहीं जानते.
Okay, Bimal Prasad, how is it presented in the Bible? There's not by works alone. Well, that's putting down the karma mamangsa philosophy. The works alone is called karma mamangsa philosophy. Write it down, Darpan. You don't know all these things. You shake your head like you know. You don't know these things.
The Bible में एक phrase है, not by works alone, जिसका अर्थ है कि केवल कर्म करने से ही सब कुछ नहीं होगा. ये कर्म मानसा सिद्धांत का खंडन है.
The karma mimamsa philosophy is work hard and God must protect you. Good afternoon, Karuna. Good afternoon. Pleasure to see you.
कर्म मानसा सिद्धांत है कि खूब मेहनत कीजिए और आपको फल अवश्य मिलेगा.
Nothing like a quick nap to refresh you, huh?
तो महाराज करुणाचंद प्रभु जी का स्वागत करें.
So there are yes, this has to do with fruit of activity, what Bimal Prasad has said. What else? There are two more things. The law of karma is presented in the Bible.
बाइबल में और भी चीजें हैं.
Yes, as you sow, so shall you reap. Yes, Harivah. So is a farming term. It means the farmer takes the seeds. Sowing means he takes the seeds and puts them in the ground, and not like sowing cloth. He takes the seeds and puts them in the ground. That is a farming term, means sowing. And so you reap. So if you plant tomatoes, you're going to get tomatoes. If you plant sugar cane, you're going to get sugar cane, you see.
तो बाइबल में एक और कहावत है कि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा. अगर आप टमाटर का बीज बोएंगे तो आपको टमाटर मिलेंगे और गन्ने का बीज बोएंगे तो गन्ना.
There's one more, at least one more, there may be others, but at least one more. Well, reap means what you harvest from it. You plant it, then you harvest. Reap means harvesting. What you're going to get out of it.
तो आप किसी चीज को बोते हैं फिर उसका परिणाम हार्वेस्ट करते हैं.
There's at least one more verse from the Bible that is the law of karma. Anybody know what it is?
Bible में एक और verse है जो कर्म law of karma के ऊपर आधारित है. आप में से कोई जानता है?
Cast your bread upon the water, and it shall return unto you. That's the law of karma. Because if you ever talk to a Christian saint, he doesn't say anything about the karma in the Bible. It's all your nonsense, manufactured Hindu stuff. You know, that's what they're going to say.
तो जो क्रिश्चियन है वो
mythology. It's your Hindu mythology. There's nothing about the law about karma in the Bible.
तो क्रिश्चियन बहुत ही उद्दंड रूप से बोलते हैं कि ये सब ढकोसला है, माइथोलॉजी है. आप कर्म का कोई सिद्धांत बाइबल में नहीं बताया गया.
If I were preaching in a, you know, in the U.S., you know, and I was in a university and somebody challenged like that, I would say, really, can you please tell me the meaning, cast your bread upon the water and it shall return on you? Can you please tell me what that means? Busted.
तुम्हारा जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे यूनिवर्सिटी में तो एक व्यक्ति ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण ढंग से महाराज को ये पूछा कि बाइबल में कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है. तो महाराज ने उनको बाइबल का ये छंद बता के बोला कि आप इस चीज का मतलब बता सकते हैं. तो फिर उनको उसका कोई जवाब नहीं था.
See, in the West, they eat bread, they don't eat chapatis. Tell them what I said.
तो छंद इस प्रकार से, cast your bread in the water and same will return. मतलब महाराज भी समझाएंगे तो बस.
Take a look. What do you say? What's so funny? he say? No, cast your bread upon the water shall return unto you. So, if you take a loaf of bread, you throw it into the ocean and the waves are going, it'll go out for some time and then the current of the waves will bring it back.
तो हमारा समझाते हैं कि अगर हम किसी ब्रेड को सागर में फेंकेंगे तो वो थोड़ी दूर तक लहरों के साथ चली जाएगी और फिर दोबारा से लहरें उसको वापस ले आएंगी.
You put it out there, your actions put it out there, and then the result of your action comes back. So here we have the law of karma in poetic form, where they don't know that.
कि आपने एक कर्म किया और फिर उसका फल के रूप में वो वापस भी आएगा. तो ये कर्म का सिद्धांत बाइबल में कवितात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया.
So back to the concept that the meek shall inherit the earth. Meek, you understand the meaning meek.
तो विनम्र जो है वो भगवान का राज्य प्राप्त करेगा.
So this is very clear from this verse. Ramananda Roy now is on a winning roll here.
तो यहाँ पे इस प्यार से भी यही चीज स्पष्ट होती है. रामानंद राय जी बता रहे हैं
that real wealth is love for Radha and Krishna.
कि असली धन भगवान राधा कृष्ण के लिए प्रेम का है.
Interestingly, the Christians have another Vaishnav saying. See, there's so much Vaishnav philosophy is embedded in Christianity. Try to understand.
Christianity में बहुत सारे वैष्णव सिद्धांत हैं.
But it's in codes and it's watered down. It's in codes. See, they can't understand. They can't understand any meaning. Any simple yellow boy here can understand Christian philosophy better than the Christians. That's a fact.
परंतु वो बहुत ही सूत्रों के रूप में दिए गए हैं और वो समझ नहीं पाते. यहाँ पे हमारे पीले भक्त भी समझ सकते हैं. वो क्रिश्चियंस से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं उनकी फिलॉसफी.
So, only a humble person can realize God.
एक विनम्र व्यक्ति ही भगवान को साक्षात्कार कर सकता है.
So here, Mahaprabhu has asked him, who's the greatest capitalist?
तो यहाँ महाप्रभु पूछ रहे हैं सबसे बड़ा धनी कौन है.
And Ramananda Roy has replied, who has love for Radha and Krishna. They are the richest.
और रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं कि जिनके पास राधा कृष्ण के लिए प्रेम है वे सबसे बड़े धनवान हैं.
So another Christian Vaishnav saying is, you can't take it with you.
तो एक और क्रिश्चियन वैष्णव सिद्धांत है कि आप अपने साथ वो नहीं लेके जा सकते.
Meaning material wealth.
इसका अर्थ है कि आप भौतिक संपत्ति अपने साथ नहीं लेके जा सकते.
So the Hindus are also thinking, oh, that Christianity, we have nothing to do with all their nonsense. The Hindus are thinking.
तो हिंदू भी ये सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों से हमें कोई लेना देना नहीं है.
Well, why don't you learn from the Christians? You can't take it with you. Why don't you learn that from the Christians? You don't know that, you Hindus. You don't know that. No, I mean, I'm just picking on Hindus. All over the world, people don't know you can't take it with you. But the Hindu family dynasties, they're quite bad about it.
तो हिंदुओं को यह नहीं पता कि आप भौतिक संपत्ति अपने साथ नहीं लेके जा सकते. तो आप क्रिश्चियन से क्यों नहीं सीखते.
Grandpa is on his deathbed.
कि एक जो दादाजी हैं वो मरणासन है.
Yes, Dr. Can you extend my life just one more year? Because my grandson, I'm afraid he may not be yet ready to manage the business.
और वो दादाजी डॉक्टर से कहते हैं कि क्या आप मेरी उम्र एक साल और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने पोते की क्षमता पे विश्वास नहीं है कि वो पूरा व्यापार संभाल सकेगा.
So Kripana.
तो कृपण.
I think you all know the meaning. Who doesn't know what Kripana means?
कृपण का अर्थ कौन नहीं जानता.
You don't know. Who else doesn't know? Be honest. Who else doesn't know what Kripana means?
हाथ खड़ा कर सकते हैं. कौन नहीं जानता.
Come on, only one person doesn't know what Kripana means?
बस एक ही व्यक्ति को नहीं मालूम.
Okay, Vaishnavis, you, in the pink charter. What does Kripana mean? Ask her. She, you claim to know what Kripana means. One who does not know his duty, that's okay. That's also a type of Kripana Hari Bhav.
तो माता जी ने उत्तर दिया, जो अपने कर्तव्य को नहीं जानता.
What else? Then you say you all know what Kripana means. So who else knows the meaning of Kripana? Yes, you, Maharaj. Yes.
One who does not engage himself in the
service of the Lord. One who does not engage himself in the
His wealth in the service of
the Lord. Yes, one who does not engage his wealth in the service of the Lord. Kripana. Haribol.
Haribol.
तो
माता जी ने उत्तर दिया कि जो अपने संपत्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाता.
Not only does not engage in devotional service, but there are many kripanas even on the material side. Not only they don't give money to God or to sadhus or even to priests or charity, but they hoard the money, you know.
कृपण ऐसे भी होते हैं कि ना केवल सिर्फ भगवान और भक्ति के कार्यों में धन व्यय नहीं करते. भौतिकतावादी कृपण कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस पैसे को लक्ष्मी को संभाल के रख लेते हैं और बिल्कुल भी उसको खर्च नहीं करते.
There was one brilliant genius of an engineer in the West.
पाश्चात्य जगत में एक बहुत ही दक्ष इंजीनियर था.
He invented all kinds of amazing aircraft and so forth.
उसने बहुत सारे एयरक्राफ्ट बनाए.
He was extremely brilliant genius.
वो बहुत ही बुद्धिमान था.
Naturally he became a multi-millionaire.
और वो अपनी इस काबिलियत की वजह से बहुत धनवान हो गया.
But he died a lonely old man with tubes in his throat.
परंतु उसकी मृत्यु ऐसी हुई कि उसके गले में ट्यूब थी.
Kripana, what was the use of accumulating all that wealth? He was lonely, depressed, and died a broken man. Then what was the use of lobha? Lobha. What was the use of it?
तो वो कृपण था क्योंकि इतना धन इकट्ठा किया उसने, लेकिन मृत्यु के समय अकेला था और कोई भी उसके साथ नहीं था, तो उसको बस लोभ था.
How many of you know the meaning of lobha?
लोभ का अर्थ कौन कौन जानता है?
Not too bad. Okay, sir, what does loba mean? Loba.
Greed, to accumulate more than what is there, more and more.
Greed, you accumulate more than you need. Haribol. Very good. So many materialistic men and women, they accumulate crores.
तो बहुत सारे भौतिकतावादी व्यक्ति करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं.
Die wealthy and miserable.
पर मृत्यु के समय बहुत ही कष्टदायक स्थिति में होते हैं.
And the family members, even before they die, already quarreling.
और जितने भी उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी मृत्यु होने से पहले ही आपस में झगड़ रहे होते हैं.
Filing lawsuits. It's very common all over the world. But the Indians have perfected it.
उनके अदालत में केस चल रहे होते हैं और ये इस प्रकार का जो फिनोमिना है ये पूरे जगत में है, लेकिन जो भारतीय हैं उन्होंने इसमें निपुणता प्राप्त की.
Just the people I know, you know, who are relatives of devotees, in almost every family there's a lawsuit going on over the family assets. You know, brothers versus brother, uncle versus brother, you know. It's as common as sneezing, you know.
जितने भी परिवारों को मैं जानता हूँ जो धनाढ्य हैं, उनमें जो भाई भाई में केस चल रहा है, इस प्रकार से देखता हूँ.
Well, this is lobha because many times they have no right according to the will and so forth for the family inheritance. Many times they don't have a right to it, but they file the lawsuit anyways just to harass and try to grab onto it.
तो इसे लोभ कहते हैं. बहुत सारे समय उनके पास अधिकतर ये अधिकार नहीं होता कि वो उस धन को अपने उसको इनहेरिट करें, लेकिन वो फिर भी केस कर देते हैं.
मटेरियल वेल्थ, एज द क्रिश्चियन से यू कैन टेक इट विद यू, व्हाट इज द यूज ऑफ इट?
तो ये भौतिकतावादी जो भौतिक धन है जो अपने साथ आप नहीं लेके जा सकते, उसका क्या उसका यूज?
When you're dragged down to the court of Yamaraj, do you think you're going to impress Yamaraj with your wealth?
जब आप यमराज जी के अदालत में जाएंगे तो आपको लगता है कि वो आपके धन से
खुश होंगे? Oh Lord Yamaraj, yeah, I've heard much about you. Yes, yes, yes.
कि यमराज जी मेरे पास कुछ है आपके लिए?
I'm worth, you know, 200 billion crore.
मेरे पास दो हजार लाख करोड़ हैं.
I can share my wealth with you if you like, because now he's a little frightened. He starts thinking maybe I can bribe Yamaraj, you know.
तो मैं आपको इसमें से कुछ दे सकता हूँ.
I'll give you diamonds and rubies and sapphires, you know, precious gems, gold.
मैं आपको हीरे दे सकता हूँ और सोना दे सकता हूँ और अलग-अलग मूल्यवान मणियाँ दे सकता हूँ.
Then Yamaraj turns to his assistant, Chitragupta.
फिर यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं.
Make a note of that. Make a note of that. He just tried to bribe the judge. Make a note of that.
उनको बोलते हैं कि इस चीज का आप लिख लो कि उन्होंने मुझे रिश्वत देने की प्रयास किया.
You're going to get, you know, 1 million more years of torture for that one.
तो इसके लिए और सजा मिलेगी.
The illustration is there in the Bhagavatam of the types of tortures in hell for such kripanas.
भागवतम में विवरण आता है कि इस प्रकार के कृपण लोगों के लिए कैसे दंड और यातना दी जाती है.
One of them is being strung up with needles put through you, strung up like on a bed or something like that, you know, and then you're pierced. I mean, really horrible punishments. I mean, hellish. That's why it's called hell.
एक प्रकार की यातना में आपको सुई धागे की तरह एक बेड के ऊपर वो बो देते हैं.
Now, next Prabhupada's statement is very important. The wealthy are generally accepted as the most important personalities in the world, in this material world. This is the third sentence.
Prabhupada अपने तात्पर्य में बताते हैं, इस भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सामान्यतया सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं.
But when we compare a material man of wealth to one wealthy in devotional service to Radha Krishna, the latter, or that person who is devoted to Radha Krishna, is found to be the greatest capitalist.
किंतु जब हम भौतिकतावादी धनी व्यक्ति की तुलना राधा कृष्ण की भक्ति के धनवान व्यक्ति से करते हैं तो राधा कृष्ण की भक्ति वाला ही सबसे बड़ा धनवान पाया जाता है.
So many of the wealthy persons are very crooked, very crooked.
तो अधिकतर धनवान लोग बहुत ही क्रूकेड होते हैं.
It's clearly stated in the Srimad Bhagavatam that in Kali Yuga, justice will be determined by how much wealth you have.
भागवतम में बताया गया है कि न्याय जो है उस पर निर्भर करेगा कि आप कितने धनवान हैं कलयुग में.
There's a sad story of a war veteran in the U.S. and he fought in one of the wars, you know, for the government. He was in the army, but he got arrested for having just one reefer, one cigarette of ganja, you know, and then for that he was sentenced to 10 years in jail. So a family man, you know.
तो अमेरिका में एक बहुत ही सैनिक था जो बहुत अच्छे से उन्होंने लड़ाई की युद्ध में, लेकिन उनको एक सिगरेट गांजा का एक पैकेट प्राप्त करने की वजह से 10 साल की जेल हो गई.
But it was exposed that some billionaire, some businessman worth hundreds of billions of dollars, computer, hundreds of billions of dollars, many thousands of crores, was engaged, and the English word is abetting, that means aiding, assisting, smuggling of hundreds of millions of dollars worth of drugs into the United States. He was already a wealthy man, but he was involved in drug laundering. Laundering, it's called, that means that he was involved in drug trafficking.
तो अमेरिका में एक व्यक्ति था जो हजारों करोड़ों रुपए का मालिक था और वो जो ड्रग्स हैं उनकी स्मगलिंग करता था.
He was never punished. He was caught but never punished.
यद्यपि उसको पकड़ा गया लेकिन उसको कोई दंड नहीं मिला.
He managed to get enough political support from his buddies to somehow get it set aside, so he was never arrested.
राजनीतिक सहायता की वजह से उसको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया.
Whereas this young man who had served his country and gone out to war for the United States was a young man with a wife and young children. He was thrown in jail with a long jail sentence. So we see here what the Shastra is saying, that justice in Kali Yuga will be determined according to how much wealth you have.
और वो जो युवा व्यक्ति था जिसने इतने युद्ध किया था अपने देश के लिए उसको 10 साल कैद हो गई. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शास्त्र में से बताया गया है कि आपको न्याय है वो आपके धन के ऊपर मिलेगा.
So I'll read again what Prabhupada says. The wealthy, this again is the third sentence. I'm repeating the third sentence of the purport. The wealthy are generally accepted as the most important personalities in this world.
जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं इस भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सामान्य सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं.
In the West it's well known the Rockefellers, the Rockefeller family dynasty, they're the ones that own Citibank. Citibank is here in India, but the people in India don't know who owns it. It's a Rockefeller family dynasty. So Citibank, you know, you can imagine the owners of Citibank can do anything practically.
तो रॉकेफेलर फैमिली है अमेरिका में जो सिटी बैंक के मालिक हैं और सिटी बैंक कुछ भी कर सकता है इतना धन है उनके पास.
But what is the use? Because they're going to die. They're going to die creeping us.
पर इस सब का क्या फायदा जब अंत में उनकी मृत्यु ही हो जाएगी तो कृपण है.
And they're going to be dragged down by the Yamadutas to the court of Yamaraj.
और उनको यमदूत यमराज के कोर्ट में लेके जाएंगे.
But I'm Mr. Rockefeller, you can't do this. I'm going to call the government, the US government, you know.
और हो सकता है वो फिर यमराज के सामने जाके ऐसे बोले कि आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं रॉकफेलर हूँ, मैं US गवर्नमेंट को बुलाऊंगा.
Such a sensible man, such a fool. Yamaraj was somebody that you fool and pull harder on the chains.
तो यमराज खूब जोर से हंसेंगे और बोलेंगे आप पूर्ण रूप से मूर्ख हो.
No, we can work something out. I got millions of dollars, you know, we can work something out. Yanking harder on the chain, choking, you know.
और वो बोलेगा नहीं हम कुछ इसमें समझौता कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारा धन है. और यमराज और जोर से उनको पीटेंगे.
So here again we see the basic wisdom, you can't take it with you. What is the point? What was the point of it? What was the point of building up huge family dynasties of wealth? What was the point of it?
तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि आप अपने साथ भौतिक संपत्ति नहीं लेके जा सकते. तो इसमें इसकी अपना इतना महान साम्राज्य, बहुत बड़ा परिवार और धन इकट्ठा करने में आपका क्या प्रयोजन था?
You can't take it with you, but what you do take with you is a sinful reaction for being a creeper and accumulating all that wealth and not utilizing it in the service of saintly persons and the Supreme Lord. That you take with you. The sinful reactions, that goes with you to the court of Yamaraj.
तो अपना भौतिक संपत्ति तो आप यमराज के पास नहीं लेके जा सकेंगे, लेकिन उसको एकत्रित करने के लिए जितने भी आपने पाप किए हैं वो आपके साथ जाएंगे.
So we see the wisdoms of Prabhupada's powerful statement. The wealthy are generally accepted as the most important personalities in this world. If you just look at what they're showing on television and, you know, even, you know, if somebody's a multi-billionaire, then immediately they're considered very high class.
तो प्रभुपाद जी ने जैसे बताया यहाँ पे कि जो धनवान व्यक्ति है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है. तो आजकल टीवी पे भी इस प्रकार से जो बहुत ही करोड़पति लोग हैं उनको बहुत आदर मिलता है.
In the recent, I don't know how the outcome of it because I don't follow American politics, but there was a very wealthy man, multi-billionaire businessman who was trying to become elected president of the United States, and he was doing quite well, getting quite a lot of support simply because he was famous and wealthy. You see exactly what Prabhupada is saying here.
तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा उद्योगपति था जिसके पास बहुत सारा धन था और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता था और उसको बहुत सपोर्ट भी मिल रहा था क्योंकि वो बहुत धनी था.
But Ramananda Roy is saying that person who is richest in love for Radha and Krishna is the greatest capitalist.
परंतु रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास राधा और कृष्ण के प्रेम का धन है वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है.
So what does capitalist mean, anyways?
तो धनी व्यक्ति का क्या मतलब है?
I could ask everybody here, and there would be different definitions of capitalist.
तो धनी व्यक्ति के अलग-अलग अर्थ हैं.
So capitalist, you can start with investment. Generally, capitalists are doing investment.
तो जो धनी व्यक्ति होते हैं वो अपना धन इन्वेस्ट करते हैं.
They accumulate wealth and they invest it, especially in real estate and industry and so forth.
वो धन को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको प्रॉपर्टी और इन सब चीजों में लगा देते हैं.
So investment.
निवेश करते हैं.
So we see that that person who develops their love for Radha and Krishna, that's an eternal investment.
तो हम देखते हैं जिस व्यक्ति ने राधा कृष्ण के लिए प्रेम विकसित किया है वो शाश्वत इन्वेस्टमेंट है.
And even if you have not progressed very far in developing your love and attachment for Radha and Krishna, that's not the end of the story.
और अगर आपने पूरा पूर्ण रूप से उनके लिए प्रेम नहीं भी प्राप्त किया है तो भी ये अंत नहीं है.
But you have to try to develop your attachment for Radha and Krishna so that you will not be thinking about family and the family bank account and the business at the time of death. Because then you'll come back again as a businessman or whatever if you qualify to come back to human form of life at all. You know?
तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम राधा और कृष्ण के लिए अपना आकर्षण बढ़ाएं ताकि मृत्यु के समय हम परिवार और बाकी भौतिक चीजों का स्मरण ना करें.
There are many instances where a wealthy man, Kripana, dies.
बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे एक बहुत कृपण व्यक्ति की मृत्यु होती है.
And he's very attached to his house, his mansion that he was living in. Very attached to it.
और वो अपने जो घर है जो उनका बंगला है उसे बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं.
So for after going down to the court of Yamaraj and being sentenced to punishment and spending time in hell.
यमलोक जाने के बाद और खूब प्रताड़ना प्राप्त करने के बाद.
Which is a different time frame because it could spend 500,000 years by earth time down in hell. But coming back again, it could all happen by warped time. In other words, he might, by earth time, it might go by as just a few years, but in hell you experience it as 10,000 years, 20,000 years. It's in the Bhagavatam. Relative time.
To,
I don't understand.
To,
so read the Bhagavatam when you become qualified. Read the Bhagavatam, you'll see.
भागवतम में समय के बारे में बताया गया है कि जैसे पृथ्वी पे अगर एक साल बीतता है तो यमलोक में या नरकों में हजारों साल बीत जाते हैं. तो अगर वो व्यक्ति प्रताड़ना के लिए 10,000 साल तक नरक में रहा भी है लेकिन 2-3 साल में वो वापस भी आ जाता है पृथ्वी.
Very sinful person just on the way to the court of Yamaraj is walking on red hot copper just on the way while being bitten by vicious dogs that are pulling their body apart, and they have a special subtle body that won't die. And they experience that as 10,000 years. And they haven't even got to the court of Yamaraj. This isn't a Bhagavatam.
So Bhagavatam mein aisa vivran hai ki ek papi vyakti jo hai, jab yamdut usko yamlok leke jaate hain, to wo tambe ke upar chalta hai, usko kutte kaatte hain, और उसका बहुत ही बड़ी दुर्गति हो रही होती है और 10,000 साल तक वो चलता है और फिर यमलोक तक पहुंचता है ऐसा विवरण.
Don't be so surprised, Arpan. Just you have to expand your consciousness. You have to expand your consciousness. That's Krishna consciousness. Krishna is very big, so you can just imagine how big Krishna consciousness is. You have to expand your consciousness and get out of this tiny little, you know, bodily concept, although your body's not tiny. But you have to, but you have to expand your beyond bodily consciousness.
Maharaj ek bhakt ke liye keh rahe hain ki उनको कृष्ण भावना अमृत बहुत ही बड़ा है, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत बड़े हैं, तो उनको अपनी चेतना को बड़ा करना
चाहिए। Short amount of time.
तो हमें ये समय के अलग अलग सापेक्षता को समझना चाहिए कि जब एक पापी व्यक्ति यमदूतों के द्वारा यमलोक लेके जाया जा रहा होता है तो वो 10,000 साल की यातना पहले ही भोग लेता है और पृथ्वी पे सिर्फ एक साल बीतता है.
So Srila Prabhupada had heard somewhere that Nehru, the founding father of India, had taken his birth as a dog somewhere in Europe. He repeated this in class, you know. He repeated in class that Norway is the name of the nation. That astrologer, he had heard astrologers said that the great and mighty Nehru had taken his birth as a dog in Europe.
तो प्रभुपाद जी ने एक बार अपनी कक्षा में नॉर्वे में बताया था कि जो नेहरू हैं उन्होंने एक कुत्ते के रूप में जन्म लिया है अपना दूसरा जन्म.
But before becoming a dog back on this planet again, he would go for maybe millions of years of torturing in hell, because he had 1/6 the karma of the entire nation of India, plus he was non-veg, non-wine drinker, fornicator, so much cheating he was doing, bedding down with British aristocracy women, very sinful man actually.
तो उनका चरित्र बहुत ही गिरा हुआ था. उन्होंने बहुत सारे ऐसे पापपूर्ण कर्म किए कि वो इंटॉक्सिकेशन नशा करते थे और मांस खाते थे, जुआ खेलते थे, पर स्त्री गमन करते थे और पूरे के पूरे भारत का 1/6 पाप उनको उनके साथ था. तो एक करोड़ों सालों के लिए उन्होंने जो है नरक में यातना भोगी होगी, लेकिन फिर भी वो कुत्ते के रूप में जन्म ले लिए. तो फिर हम तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 40-50 साल में यहाँ पे बहुत सारे करोड़ साल बीत गए.
So point is that he went down to hell and suffered for hundreds of thousands or even millions of years in hell. In his experience, that's how long it lasted. On this planet, maybe a few years went by and then he came back as a dog on this planet. So it's a different time, it's a time warp. Warp? Do you know what warp means? Twist.
तो ये समय की सापेक्षता है कि नरकों में करोड़ साल बीत गए और यहाँ पे बहुत 30-40 साल.
Better to be simple devotee.
अच्छा है कि हम सरल भक्त बने.
That wealthy materialist.
एक बहुत ही धनाढ्य भौतिकवादी व्यक्ति बनने से अच्छा है कि हम सरल भक्त बने.
And there's no telling what will happen with you all here. Somebody here might become wealthy. Who could say?
और हो सकता है आप में से कोई धनी भी बन जाए.
But many devotees who become wealthy, they don't do very well.
परंतु अगर भक्त धनी हो जाते हैं तो उनकी भक्ति में बाधा आती है.
They become very attached to that wealth, just like the materialists. They're devotees. They have that base. They stick their hand into a bead bag. What kind of devotee they are?
तो वो अपनी भौतिक धन से बहुत आसक्त हो जाते हैं.
Sakama.
और सकाम भक्त बनते हैं.
Kama means desire. Doesn't just mean lust. It means desire.
काम का अर्थ केवल
काम. So many material desires and attachment.
काम का अर्थ है भौतिक इच्छा.
And they also develop a lobe.
और फिर उससे उनको लोभ भी विकसित होता है.
Great. They also, but they're still having neck base and sticking their hand in a bead bag.
तो फिर भी उनके पास कंठी माला है और वो उनके पास बीड बैग है.
That's no insurance that you won't end up in the court of Yamaraj if you commit sinful activity again.
परंतु ये कोई एश्योरेंस नहीं है कि आप यमराज के पास नहीं जाएंगे अगर आप पाप कार्य करेंगे तो.
But let's end with Srila Prabhupada's quote here from the 10th canto of the Bhagavatam.
तो हम कथा को विराम देते हैं. प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में दस भागवतम का कोट दिया है.
This is the last paragraph of the purport. What is difficult for the devotees of Lord Krishna, who is the shelter of the goddess of fortune? Although such devotees can obtain anything, O King, they do not desire anything. So, okay.
लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए कौन सी बात कठिन है? हे राजन, यद्यपि ये भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये किसी बात की इच्छा नहीं करते.
Even if you're just a simple devotee, you may be better off than a wealthy devotee who becomes kripana attached.
आप अगर केवल एक सरल भक्त हैं, तो आप एक धनाढ्य भक्त से अच्छे हो सकते हैं, जो कि आसक्त हो जाते हैं.
Of course, there are wealthy devotees like Ambarish, who is very, very generous.
परंतु कुछ ऐसे भी धनवान भक्त हैं अम्बरीश प्रभु जैसे जो बहुत ही उदार हैं.
He has donated tens of millions of dollars for devotional projects.
उन्हें करोड़ों डॉलर का दान दिया है प्रभुपाद जी के प्रोजेक्ट्स में.
But he won't be back again. There is no way that he's going to be back for another birth in this material world. No way.
उनका पुनर्जन्म नहीं होगा भौतिक जगत में.
Out of love and appreciation, certainly. Srila Prabhupada will personally come and take him back to God. There's no question.
और प्रभुपाद जी उनको लेने के लिए स्वयं आएंगे.
Okay, any questions?
कोई प्रश्न है?
Yes, Bimal.
Thank you so much. Thank you, Maharaj. I was just, if you don't mind, can I play devil's advocate? If you don't mind, can you hear me? No. I'm just asking. Can I play devil's advocate? Okay. So my question is, are devotees envious of rich people? Our devotee is envious of rich people.
Okay, repeat the question. Where's the portable mic?
हाँ क्या जो भक्त लोग होते हैं क्या वो अमीर लोगों से जलते हैं?
Okay. He translated. Yeah. It depends on what kind of devotee.
हाँ ये इस पर निर्भर करता है किस तरह के भक्त हैं.
Yes, this is very important.
बहुत जरूरी है.
See, I was personally instructed in this by Prabhupada.
Srila Prabhupada ne mujhe vyaktigat roop se jo hai is bare mein nirdesh diya tha.
I asked him about the Bhagavad Gita. Brahmabhuta prasanatma na sochate na kanchate.
Srila Prabhupada se Brahmabhuta prasanatma na sochate na kanchate shlok pe jo hai maine ko sawal pucha tha.
That a devotee, for the devotees there is no hankering or lamentation.
To bhakt ke liye jo hai na koi anushochana hoti hai na koi lalach hota hai.
This was a morning walk in Detroit, Michigan, 1975. So I said this, na sochiti da kanchiti, no hankering and lamentation, but Srila Prabhupada seems like there are a lot of devotees who are full of sochiti and kanchiti.
तो प्रभुपाद आपने तो वैसे भागवत गीता में ऐसा लिखा है भगवान ने भी कहा है न सोचते न कांक्षते, पर हम तो ऐसे कई भक्तों से मिलते हैं जिनको लगता है कि वो सिर्फ सारा दिन सोचती कांक्षती में जो उनकी जिंदगी बीत जाती है.
You're ready for Prabhupada's answer?
आप लोग तैयार हो जाइए श्री प्रभुपाद के जवाब के लिए.
Fasten your seat belt, please.
तो जैसे कि आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो.
He said, "They're not devotees."
ये भक्त नहीं है.
If you are on the materialistic plane full of sources and consciousness, Prabhupada said, they're not devoted. Shadow attachment, neck devotion, shadow attachment. Simply a shadow of a real Vaishnava. That's all.
तो अगर ऐसे लोग जो भौतिक धरातल पे हैं और सारा दिन जो है यही सोचते रहते हैं पुराने गुजरे हुए चीजों के लिए जो है मातम करते रहते हैं और आने वाली चीजों के लिए लोभ करते रहते हैं तो इनको भक्त नहीं कहते हैं इनको भक्ति की छाया होती है
Because real devotee means the platform. Real devotee is defined by Shri Rupa Goswami, nectar devotion.
तो असली भक्त क्या होता है उसकी परिभाषा रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में देते हैं
Everyone say together please the shloka.
हमारे पीछे पीछे धराइए
Anya vilasita sanyam jnana kramane navrata anukulyena krishnana bhakti uttama So uttama that devotional service which is not tinged by fruit of activity karmic activity not tinged by jnana mental speculation that pure devotional service that's pure devotional service
तो भक्ति का मतलब है जो कर्म और ज्ञान से जो है मुक्त हो ऐसे भगवान को प्रसन्नता भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसे भक्ति कहते
हैं if I languishes on the platform of sochti and kanchati very risky because then Krishna may decide based on their pious activities Krishna may decide to fulfill their desires and you can go to heaven and bliss
तो क्योंकि ये इस तरीके का जो नौसिखिया जो स्तर होता है ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर हमेशा इस तरह की इच्छाएं बनी रहती हैं और क्या पता भगवान का जो है भगवान का की नियत जो है बदल जाए भगवान बोले कि ठीक है कर दो उसकी इच्छा पूरी जिसके फलस्वरूप जो है आप उच्च लोग में पहुंच जाए और भक्ति से रह जाए एक बार प्रभुपाद ऐसा जिक्र भी किया था कि मेरे ज्यादातर भक्त जो है वो स्वर्ग लोग या उच्च लोगों में जाएंगे
But you know what? Srila Prabhupada is so kind and so merciful and so feeling indebted to even the sinful devotees that fell down massively that we hear reports how he's coming and picking up, you know, that really they should have gone to heavenly planets and Prabhupada is taking them to
Gokula. वदान्यता देख सकते हैं इसके कई ऐसे प्रमाण हैं कि ऐसे भक्त जो हमें मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि ये बहुत ही नीच गंभीर कार्य करते हुए पाए गए उनका पतन भी हुआ मगर फिर भी मृत्यु से पहले जो है श्रील प्रभुपाद स्वयं उनमें से कई भक्त इन सभी भक्तों को जो है अपने साथ वापस ले गए
of their best years dedicated to building this mission, you know. So Prabhupada doesn't have the heart to just let them rot on the heavenly planets.
So Srila Prabhupada jo hai, Srila Prabhupada ne is baat ki sarahana ki, is baat ko maddenazar mein rakha ki in logon ne apne behtareen saal apne zindagi ke jo hai wo is kaam ko diye, Srila Prabhupada ko sat ki seva mein, Mahaprabhu ki seva mein diye, to isliye Prabhupada jo hai, unko apne saath lega, Prabhupada aisa promosh nahi hai.
We shouldn't gamble.
मगर फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी से जुआ खेलें।
If Prabhupada does not intervene, you may go to heaven banks if you talk about devotee, if you're full of lust and one power, one riches, really like the idea of having your own private army of 100,000 men, you know, and super weapons, you know. Oh, I never did like DARPA anyways. you know. So if you want those kind of powers, they're available. You can get.
तो क्योंकि अगर तो इसलिए जो हमें जुआ इसलिए नहीं खेलना चाहिए कि अगर प्रभुपाद ने हस्तक्षेप नहीं किया तो हमें से कई लोग जो है जो अगर वो सकाम भक्ति में लिप्त हैं तो वो उच्च लोगों में जाएंगे हो सकता है आपकी अपनी छोटी सी जो है एक फौज भी हो आपके पास जो है अलग अलग तरीके के हथियार हो आपको कोई बंदा पसंद ना हो तो उसको हम भस्म कर दें ये सब आप कह सकते हैं मगर भक्ति से रह जाएंगे
We have to be very careful what kind of message we send.
तो इसलिए जो है हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि किस तरह की भक्ति हम कर रहे हैं।
We can expect mercy. Nectar devotion says we should expect mercy.
तो भक्ति रसामृत सिंधु में जैसा कहा गया है कि हमें भगवान की कृपा की याचना और उसकी अपेक्षा करनी चाहिए।
We should not misuse that.
मगर उसका दुरुपयोग ना करें।
We should follow properly, and that is guaranteed that we will go to Gokula at least. Gokula, that earthly plane. Where Krishna's pastimes are going on, so we get purified, final purification there.
तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम गोकुल पहुंचते हैं गोकुल वो जगह है भौतिक जगत में वो धरातल जहाँ पर भगवान जो है प्रकट अपनी लीला कर रहे होते हैं वहां भाग जाकर अपने शुद्धि ग्रहण करके गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं।
ओके थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्री गोपाल की जय, श्री श्री गोनिता की जय, श्री जगन स्वामी बलदेव सुपात्र की जय, कृष्ण ब्रह्म राधिक रमान की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोलो।